श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 27। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। ये मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जो इस प्रकार का हमारा अभ्यास होता है, जो हम बार बार भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान का स्मरण बार बार करने से भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति होती है और यही जीवन का लक्ष्य है। इसी से जीवन में सब सर्वोच्च सुख की प्राप्ति जीवात्मा को हो सकती है। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन तो करना ही चाहिए और बाकी जो अन्य कार्य हैं उनको भी कृष्ण के संबंध में करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। इसका अर्थ क्या है? प्रायः लोग अपने समाज के में जो काम करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जीवन का कुछ कार्य करूँ, जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य करें। लेकिन एक भक्त का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है। वो परिवार का भरण पोषण और अपना भरण पोषण या जीवन निर्वाह भी इसीलिए करते हैं ताकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके। तो इसलिए कर्म करने का अर्थ है, जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उद्देश्य भोग का संग्रह करना नहीं है अपितु भक्ति करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाने के लिए करना चाहिए और जो भी धन उसके अतिरिक्त इतर आता है उसको भी भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। ये तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा कर लिया था, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि उन वस्तुओं को नहीं अर्पित करना चाहिए जो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। कुछ जो भी खाते हो भगवान को अर्पित करो, इसका अर्थ ये नहीं कि हम चाय का भोग लगा सकते हैं या प्याज लहसुन से बनी वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। जो भी खाने का खाते हो अर्थात जो कृष्ण को अर्पित की जा सकती हैं वो वस्तुएं ही खा करके, वो क्षमा कीजिएगा, वो वही वस्तुएं खाए और उनको पहले कृष्ण भगवान को यानी भगवान के फोटो या विग्रह को समर्पित करें, उसके बाद ग्रहण करें। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। यानी कि पूजा भी करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की ही पूजा करें, ये है अर्थ। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। अर्थात भगवान के प्रचार प्रसार के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रायः लोग सोचते हैं कि मंदिर से सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। तो भाई मंदिर से फ्री कैसे मिलेगा? जब कोई कुछ लोग इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, अपने अर्जित धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तभी तो मंदिर से कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा। और वस्तुतः देखिए तो इस जगत में कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ मूल्य देना पड़ता है। तो अपने आसपास आप भगवान की भक्ति का प्रचार करें, या मंदिर के भक्त अगर भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं कर रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए कोई भी धनराशि की का योगदान करना, चाहे वो कितना भी छोटा हो बड़ा हो, जो भी आप सहर्ष दें, इससे हमारा ही उत्थान होता है। कोई भी कार्य होता है तो उसको करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, सभी को बराबर से लाभ मिलता है। तो भले ही खुद व्यक्ति प्रचार ना कर सके, अगर उसके पास धन है या शारीरिक बल है, किसी भी तरह से वो मदद करता है भगवान के प्रचार में, तो उसका ये शाश्वत लाभ होगा, बहुत महान लाभ प्राप्त होगा, जिसके बारे में भगवान आगे बताएंगे भी। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं? क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा चित्त बहुत भ्रमित, बहुत व्यथित रहता है कलयुग के प्रभाव के कारण। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला पे करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। लेकिन अभी भी जानते हैं कि ये भी हमारे लिए मुश्किल होता है करना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान के नाम के जप के साथ साथ अन्य जो क्रियाएं हैं वो भी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इसमें अर्चन बहुत मदद करता है भगवान के सेवा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करना भक्ति नहीं होता है, लेकिन स्नान करके ही भगवान की भक्ति होगी, अर्चना होगी, तो भक्ति के संग से, इसे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्ध भक्ति है, जो स्वरूप से ही भक्ति है वो है अर्चन। तो अर्चन करने के लिए स्नान कर रहा हूँ, इसलिए स्नान भी भक्ति हो जाती है। हाँ, लेकिन ये परिभावित भक्ति हो जाता है अगर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें, हरे कृष्ण गाते हुए व्यक्ति को स्नान करे तो ये परिभावित भक्ति हो जाती है, क्योंकि इसमें सीधे कृष्ण का स्मरण भी हो रहा है और व्यक्ति स्नान भी कर रहा है। तो इसलिए उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हर कर्म, हर वचन और मन के द्वारा, मन की क्रियाओं के द्वारा हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। जब मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो उस व्यक्ति का भी तो स्मरण होता है कि मैं ये उसको दे रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ खाता हूँ और उसको पहले समर्पित करता हूँ तो याद है ना कि इसका प्रसाद है। तो इस प्रकार से किसी को दान देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका भी स्मरण होता है। तो क्रियाओं के द्वारा भी अगर क्रियाएं उस व्यक्ति को समर्पित हैं तो व्यक्ति को भगवान का स्मरण कर सकता है, यही उसका उद्देश्य है। तो महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता के 6वें अध्याय में की गई थी। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यमां समय युक्त तमो मतः। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में एक अच्छी टिप्पणी चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि इस्कॉन के भक्त अगर 16 माला का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं तो प्रचार आंदोलन में की गई जो भी कार्य होते हैं इस जगत में, भगवान के प्रचार को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो भक्ति के कल्टिवेशन, जो हम भगवान से अपने संबंध को वापस जागृत करना चाहते हैं, उनसे भिन्न कार्य नहीं है। बहुत बार भक्तों को दिखना पड़ता है कितने किताबें आई, कितना किताबें बिकी, या कितना अनाज आया भगवान के भोग के लिए, कितना बिका, कितना खर्च हुआ, सब व्यवस्था है। तो ये सारी क्रियाएं भी भक्ति हो जाती हैं, बशर्ते हम 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करें। ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए है जो सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, जो शुरुआत में 16 माला ना भी कर पाएँ, धीरे धीरे स्तर पर आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हर ये सच्चे भक्त का लक्षण है कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है। केवल ऐसा नहीं कि जो केवल ऐसे आजकल लोग सोचते हैं कि सुबह भगवान को बत्ती दिखा दी उसके बाद दिन भर भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। अब इसका लाभ क्या है, ज़रा इसको देखिए। भगवान इसको दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, शुभ शुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने कर्म करने के लिए मना नहीं किया है। ये कभी भी गीता में भगवान, कभी तो नहीं, कभी कभी भगवान जो कहते भी हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान यही कहते हैं कि कर्मों को रोकना, कर्म करना बड़ा मुश्किल, कर्म ना करना ये मुश्किल है, असंभव है एक्चुअली। ना ही तिष्ठत्य अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी कर्म ना करे जीवात्मा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर तो कोई व्यक्ति कहेगा कि तो कर्म बंधन लगेगा ही, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, अगर कर्म को हम भगवान को समर्पित करते हैं तो शुभ और अशुभ, कोई व्यक्ति अगर कोई शुभ कार्य कर रहा है तो भी उसका अच्छा फल, सो कॉल्ड अच्छा फल, तथा कथित अच्छा फल भोगने के लिए जगत में आना पड़ेगा, और इस जगत में तो दुख ही है। और अगर अशुभ कार्य करता है तो उसकी वजह से नरक इत्यादि के दुख भोगने पड़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, जिन कर्मों की करने की प्रवृत्ति हमारे पास है तो उसको अगर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो फिर भगवान की कृपा से उन दोनों का ही फल नहीं मिलता, मतलब शुभ कर्म भी खत्म हो जाते हैं और अशुभ कर्म भी खत्म हो जाते हैं, और कर्म बंधन से मुक्त होकर के व्यक्ति भगवान के धाम विमुक्त हो, बढ़िया से मुक्त होकर के भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो आप देख सकते हैं कि भले ही आज लगे अरे भगवान को दान क्या देना है, भगवान को क्या, भगवान की सेवा में क्या लगाना है, भगवान का अर्चन क्यों करूं, लेकिन ये जो लाभ है जगत से मुक्त होने का, वो इस जगत में और किसी की सेवा करके प्राप्त नहीं हो सकता है। और यही संन्यास योग है। न्यास का मतलब होता है स्थित होना, और संन्यास मतलब होता है बढ़िया तरह से स्थित होना। जीवात्मा की स्थिति है कृष्ण की दास के रूप में, तो संन्यास योग का अर्थ है अपनी वास्तविक स्थिति में कृष्ण के दास के सेवक के रूप में स्थित होना और भगवान की सेवा में लगे रहना। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति करता है तो हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म के बंधन से फल से वो मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, अनासक्तस्य विषयान यथाहर उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। इसका अर्थ इम्पॉर्टेंट है कि जो आसक्ति है वो विषयों से ना होकर के आसक्ति भगवान से है, लेकिन कर्म तो करना ही है, इस कारण से कर्म के फलों को कृष्ण को समर्पित करते हुए चलता है भक्त, और अपितु कृष्ण के लिए ही वो कर्म करता है। कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब अपने कर्मों को हम भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। शुभ अशुभ कर्मों के दोनों का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति का आवरण बना रहता है कि वो उसका भगवान से कोई संबंध नहीं। बहुत सारे लोग धनी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो अगर भगवत गीता को सुन करके, भक्तों का संग करके व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के कर्मों अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, तो अपने लिए भोग, अपने भोग के लिए कर्म करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की समाप्त हो जाती है, और उसको हृदय में अनुभव भी होने लगता है कि वो कृष्ण का दास किस प्रकार से है। और ये क्रमशः होता है, अधिक से अधिक ये बात हृदय में उजागर होने लगती है कि वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है, और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। तो वो और सम्यक रूप से स्थिति में स्थित हो जाएगा। शुरुआत में भले ही वो गुरु के मार्गदर्शन में करे, उसका भाव नहीं हो, लेकिन करते करते, इन क्रियाओं को करते करते जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो फिर वो इस बात को हृदय में समझ पाएगा और बड़े भाव के संग, बड़े उत्साह के संग कृष्ण की सेवा में तत्पर हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है और बढ़ता चला जाता है, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है, और वह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यह स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैश्यसी, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। तो इस जीवन में जब हम कृष्ण के दास के रूप में सेवा करते रहते हैं, अर्थात अपनी स्थिति को स्वीकार करके कि हम कृष्ण के दास हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा हम पर मिलती होती है, और मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो अगर आप विचार करें तो ये जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि जो क्रियाएं हम स्पष्ट रूप से करते हैं, आसानी सरलता से सहजता से करते हैं, केवल उन क्रियाओं को भगवान की तरफ मोड़ने का आवश्यकता है, और इसके लिए प्रैक्टिकली वैष्णवों की, गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि अपनी क्रियाओं को, विशिष्ट क्रियाओं को कृष्ण को कैसे समर्पित करें। शायद आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ कैसे होती हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। भगवान श्री कृष्ण का धाम है, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वैकुंठ जगत स्थित रहते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि वो भगवान से अपने संबंध को स्थापित नहीं करना चाहते हैं, तो यदि वो मुक्त होते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति में एक आध्यात्मिक स्फुलिंग या आध्यात्मिक स्पार्क के रूप में जाके स्थित हो जाते हैं, कण के रूप में। लेकिन जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करते हैं, अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो वो लोग भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। और भगवान के धाम की जो प्राप्ति होती है उसमें चार प्रकार की मुक्ति होती है। इसे एक होती है सालोक्य, यानी भगवान के धाम में उनके लोक में रहना, सारूप्य यानी भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सामिप्य मतलब भगवान के बहुत पास में रहना, और सारष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये सारी मुक्तियाँ, ये चार मुक्तियाँ हैं। और जो पांचवी मुक्ति है सायुज्य, तो सायुज्य मुक्ति के बारे में भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे माम विमुक्तो माम उपेशसि, अर्थात बड़ा निकट मेरे रहोगे, मतलब भगवान के धाम में उसको सेवा करने का मौका मिलेगा, भगवान के संग रह पाएगा। तो अभी देख रहे हैं कि भले ही आज हम भगवान के लिए कुछ ना करना चाहें, लेकिन ये बहुत बड़ा अज्ञान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बलराम जब पहली बार मथुरा में गए, तो सुदामा नाम के एक ब्राह्मण ने उनको एक माला अर्पण करी, क्षमा कीजिएगा एक मालाकार ने, सुदामा, ये सुदामा भगवान का मित्र की बात नहीं है, एक मालाकार थे। तो एक बार उन्होंने माला दी कृष्ण बलराम जी को, तो भगवान ने कहा कि इस जीवन में तुम बहुत सुखी रहोगे, सारा भौतिक सुख मिलेगा, और भगवान के उसके बाद जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे धाम को आ जाओगे। देखिए भगवान कितने कृतज्ञ हैं, एक बार भगवान के लिए माला बनाने से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। तो सोचिए कि अगर रोज़ भगवान के लिए कोई माला बनाए या भगवान को भोग लगाए तो कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा भाग्य खुल जाएगा उसका। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रथ रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। अर्थात केवल ड्रेस का परिवर्तन नहीं, अपितु सम्यक रूप से अपनी वास्तविक स्थिति कृष्ण के दास के रूप में हमको स्थित होना होता है, सेवा कर रही होती है भगवान की। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उसका नित्य दास मानता है। अर्थात भगवान कहाँ लेके जाएंगे ये भक्त की चिंता नहीं होती, उसकी केवल यही इच्छा होती है कि मैं जिस भी अवस्था में रहूं कृष्ण की सेवा करता रहूं। और सेवा के प्रति भी आसक्त नहीं होता है, मतलब कौन सी सेवा करने को मिलेगा उसके प्रति आसक्त नहीं होता है, कृष्ण की सेवा करने के प्रति आसक्त रहता है, सेवा भाव के प्रति आसक्त रहता है। जिस परिस्थिति में जैसे भगवान रखेंगे, जैसी सेवा हमसे स्वीकार करना चाहेंगे वैसे रखें, और मैं हम हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करना चाहूँगा। उदाहरण के लिए हमारे मंदिर में एक भक्त हुए, उनका नाम था विभू चैतन्य प्रभु, तो भगवान के लिए 14 घंटे रोज कुकिंग किया करते थे। बाद में जो बहुत वृद्ध हो गए तो उनसे रूम से भी बाहर नहीं निकला जाता था, और एक्चुअली उससे पहले वो जब वृद्ध हो गए थे तो भक्तों के लिए कुछ चरणामृत बांटते थे, और उसके बाद जब वो भी नहीं हो पाता था तो फिर अपने रूम पे बैठकर भगवान के लिए, बहुत सारी फोटोएँ थीं और भगवान के लिए भगवान की ही माला, जो प्रसादी माला आती थी उनके पास, उसी को तोड़ के फिर से माला बनाते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमेशा किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा कर सकता है भक्त अलग अलग स्थिति में। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। भगवान के लाभ क्या हो सकता है? भगवान की सेवा, भगवान का प्रचार, ये सब। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित करते हुए पर ध्यान नहीं देता। अर्थात वेदों में बहुत सारी बातें दी गई हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि भगवान को जानना ही वेदों का उद्देश्य है, और भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। तो भक्ति परक कार्यों में ही वो भक्ति संलग्न रहता है, उतना कर्मकांड के प्रति कोई खास उसकी रुचि नहीं होती, बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। समान मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भगवान की कथा में और सेवा में श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा का अर्थ है कि बस यही करना है, यही करना है। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए, कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ उसी से मेरी सफलता प्राप्त हो जाएगी, यही शुद्ध श्रद्धा का लक्षण है। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना ही वेदों का लक्ष्य है। तो कृष्ण की सेवा में अगर वो व्यक्ति रत है और वेदों के द्वारा चीज़ें में जो नियम बनाए गए हैं अगर उसमें कुछ उसके अनुसार वो थोड़ा नहीं भी कर पा रहा है तो भी वो सम्यक रूप से अवस्थित है, ठीक है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है वेदों का कृष्ण के शरण में लाना एक जीवात्मा को। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्य को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता कि कैसे एक शुद्ध भक्त कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। एक बद्ध आत्मा चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उस चेतना से युक्त नहीं है। कौन सी चेतना? जिसमें हर कार्य हर इच्छा केवल कृष्ण को समर्पित होती है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं, ठीक शब्द है, तार वाक्य क्रिया मुद्र विज्ञ ना बुझाए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ये बहुत सुंदर बात है, अर्थात भक्ति ना भी करे लेकिन भक्ति करने की योजना बना रहा है तो भी मुक्त हो जाता है। इह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। जो कृष्ण की सेवा ना भी कर पाए लेकिन करने की इच्छा कर रहा है वो मुक्त है, और जो कृष्ण की सेवा करेगा उसका तो कहना ही क्या। अगर कोई भक्त प्रचार करने की इच्छा करता है, योजना बनाता रहता है मैं ऐसे प्रचार करूंगा ऐसे प्रचार करूंगा, प्रचार ना भी कर पाए लेकिन योजना बनाने मात्र से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कृष्ण को प्रसन्न करता है, और प्रचार होगा नहीं होगा वो तो कृष्ण की इच्छा पे है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार से पूरी तरह से शुद्ध हैं, एक शुद्ध भक्त जो हमेशा पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित है वो भी आलोचनाओं से ऊपर है। अर्थात अगर कोई वेदों में वर्णित सामान्य नियमों का पालन कोई भक्त नहीं कर पा रहे हैं तो इस कारण से उस भक्त की आलोचना करना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। तो ये नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या ये भक्त कृष्ण को समर्पित हैं या नहीं। ये बात महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हरे कृष्णा।